एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जो एक पुरानी अलमारी के पीछे छुपी है।
हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही जादुई दुनिया।
हम बात कर रहे हैं क्लाइव स्टेपल्स लुइस, मतलब सीएस लुइस के मशहूर उपन्यास द लायन द विच एंड द वार्डरोब की।
ये द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला की पहली किताब थी जो छपी 1950 में। हालांकि कहानी के क्रम में ये दूसरी आती है।
हाँ, और लुइस खुद भी एक दिलचस्प शख्सियत थे। आयरलैंड में जन्मे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में प्रोफेसर, 20वीं सदी के आप कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण ईसाई विचारक और लेखक।
और उनकी अपनी यात्रा, मतलब नास्तिकता से आस्तिकता की ओर, उसने उनके लेखन को, खासकर नार्निया को, एक गहरी परत दी है ना?
बिल्कुल, आज हम उसी परत को खोलने की कोशिश करेंगे। कहानी का जादू तो है ही, पर उसके गहरे अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या बात है इस किताब में जो आज भी इतनी पसंद की जाती है।
सही कहा। और ये भी देखिए कि लुइस अकेले नहीं थे, वो J.R.R. टॉल्किंग जैसे लेखकों के साथ द इंकलिंग समूह का हिस्सा थे। वहां वो अपनी रचनाएं एक दूसरे को सुनाते थे।
हाँ, वो दौर भी अलग था। जब ये किताब छपी 1950 में तो द्वितीय विश्व युद्ध की यादें ताज़ा थीं।
बिल्कुल, कहानी में भी तो बच्चे लंदन से दूर भेजे जाते हैं बमबारी से बचने के लिए। ये उस वक्त की सच्चाई थी।
शुरुआत में मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, सुना है। कुछ लोगों को अजीब लगा ही ईसाई रूपक और ग्रीक मिथकों का मिश्रण, मतलब फौन वगैरह।
हाँ, कुछ आलोचकों को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन पाठकों ने इसे हाथों हाथ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। पेवेंसी भाई बहनों के साथ चलते हैं नार्निया।
देखते हैं अच्छाई, बुराई, विश्वासघात और क्षमा जैसे विषय कैसे बुने गए हैं इस कहानी में।
तो कहानी शुरू होती है लंदन में। हवाई हमलों का खतरा है और चार पेवेंसी भाई बहन हैं। पीटर जो सबसे बड़े हैं, फिर सुजैन जो समझदार हैं, एडमंड थोड़ा शरारती, और सबसे छोटी लूसी।
हाँ, उन्हें शहर से दूर एक प्रोफेसर डिगोरी किरके के पुराने बड़े से देहाती घर में भेज दिया जाता है। माहौल थोड़ा अनिश्चितता वाला है।
बिल्कुल, एक अनजान जगह, घर से दूर। फिर एक दिन बारिश हो रही है, बाहर खेल नहीं सकते, तो बच्चे घर में ही लुका छिपी खेल रहे हैं।
और यही लूसी को वो अलमारी मिलती है, एक खाली से कमरे में एक बड़ी पुरानी वार्डरोब।
हाँ, वो उत्सुकतावश उसे खोलती है। अंदर कोट टंगे हैं। वो उनके पीछे जाती है, और पीछे, और अचानक
उसे पैरों के नीचे बर्फ महसूस होती है, ठंडी हवा लगती है।
जी हाँ, वो कोटों के जंगल से निकलकर एक बर्फीले जंगल में पहुंच जाती है। रात का समय है और पास में एक लैंपपोस्ट जल रहा है। ये नार्निया है।
क्या कल्पना है, एक साधारण सी अलमारी एक पूरी दूसरी दुनिया का रास्ता। ये लुइस का कमाल है, मतलब रोजमर्रा की चीजों में जादू ढूंढ लेना।
वहीं उसकी मुलाकात होती है मिस्टर टमिनस से, एक फौन, आधा इंसान आधा बकरा, हाथ में छाता और कुछ पैकेट्स लिए हुए। वो लूसी को देखकर चौंक जाता है।
हाँ, क्योंकि इंसान तो वहां कम ही आते होंगे, खासकर उस दौर में।
बिल्कुल, टर्मिनस उसे अपने घर चाय पर ले जाता है, और वहां वो नार्निया की दुखद कहानी सुनाता है कि कैसे सफेद जादूगरनी जाडेज ने पूरे देश पर कब्जा कर रखा है।
और वो शाश्वत सर्दी वाली बात, हमेशा सर्दी पर क्रिसमस कभी नहीं, कितना निराशाजनक माहौल।
हाँ, और सारे जादुई प्राणी डर में जी रहे हैं। टर्मिनस खुद भी फंसा हुआ है। उसे हुक्म है कि कोई इंसान दिखे तो जादूगरनी को सौंप दे, पर लूसी को देखकर उसका मन बदल जाता है।
उसका जमीर उसे कचोटता है।
हाँ, वो रोते हुए बताता है कि वो उसे धोखा देने वाला था। फिर वो उसे सुरक्षित वापस अलमारी तक छोड़ाता है।
और लूसी जब वापस आती है प्रोफेसर के घर, तो वहां तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई समय ही नहीं बीता।
यही तो अजीब बात है। वो दौड़कर अपने भाई बहनों को बताती है, पर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता।
यहाँ विश्वास और संदेह का पहला टकराव आता है ना? पीटर और सुजैन सोचते हैं बच्ची है, कहानी बना रही है, और एडमंड वो तो मजाक उड़ाता है।
हाँ, ये लूसी के लिए बहुत दुख की बात है, सच बोलने पर भी जब अपने ही ना माने।
शायद ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं, ये उस मुश्किल को भी दिखाता है जब हम कोई गहरा अनुभव या विश्वास व्यक्त करना चाहते हैं और दुनिया उसे मानती नहीं, उसे कल्पना कह देती है।
कुछ दिन बाद फिर से लुका छिपी खेलते हुए एडमंड खुद भी अलमारी में घुस जाता है, लूसी का मजाक उड़ाने या देखने के वो कहां जाती है।
और वो भी पहुंच जाता है नार्निया।
हाँ, पर उसे टमनस नहीं मिलता। उसे मिलती है सफेद जादूगरनी एक शानदार स्लेज पर।
और जादूगरनी वो तो बहुत चालाक है, वो एडमंड की आंखों में देख लेती है, उसकी जलन, उसकी महत्वाकांक्षा।
बिल्कुल, वो पहले तो थोड़ा गुस्सा दिखाती है, फिर नरमी से बात करती है, उसे अपनी स्लेज में बिठाती है, गरम पीने को देती है, और सबसे बड़ी चीज,
टर्किश डिलाइट, वो जादुई मिठाई।
हाँ, वो इतनी स्वादिष्ट है कि एडमंड उसका दीवाना हो जाता है और चाहता है। ये सिर्फ मिठाई नहीं, ये प्रतीक है प्रलोभन का, नशे का।
हाँ, जो विवेक को खत्म कर देता है।
हाँ।
और जादूगरनी वादा करती है कि अगर वो अपने भाई बहनों को ले आए तो वो उसे राजकुमार बनाएगी और ढेर सारी टर्किश डिलाइट।
और एडमंड, जो शायद हमेशा पीटर की छाया में महसूस करता है, वो इस लालच में फंस जाता है।
ये उसका पहला बड़ा विश्वासघात है, या पहला नहीं, शायद दूसरा। पहला तो जब उसने लूसी का मजाक उड़ाया था।
हाँ, सही कहा। जब वो नानिया से लौटता है तो उसे लूसी मिलती है। लूसी खुश हो जाती है कि चलो अब कोई गवाह है।
लेकिन एडमंड फिर धोखा देता है।
हाँ, जब वे वापस प्रोफेसर के घर आते हैं तो पीटर और सुजैन के पूछने पर वो साफ झूठ बोल देता है। कहता है नारनिया वानिया कुछ नहीं, वो तो बस लूसी के साथ खेल रहा था।
लूसी बेचारी, उसका दिल ही टूट गया होगा।
एडमंड का ये किरदार क्या दिखाता है, मतलब बुराई कैसे काम करती है?
शायद यही कि बुराई बाहर से ज्यादा हमारे अंदर की कमजोरियों जैसे ईर्ष्या, गुस्सा, असुरक्षा का फायदा उठाती है। एडमंड कोई पैदाइशी बुरा नहीं था, पर उसकी कड़वाहट
उसे गलत रास्ते पर ले गए।
खैर, कहानी में प्रोफेसर किर्के की एंट्री होती है। वो काफी समझदार लगते हैं। वो पीटर और सुजैन को बुलाते हैं।
हाँ, और वो एक अजीब सा तर्क देते हैं लूसी के बारे में कि या तो वो पागल है या झूठ बोल रही है या सच।
और चूंकि वो ना पागल लगती है ना झूठी, तो शायद सच ही कह रही हो। तर्क और विश्वास का एक और पहलू।
आखिरकार एक दिन जब वो घर की देखभाल करने वाली मिसेस मैक्रेडी से छिप रहे होते हैं, चारों एक साथ उसी अलमारी में घुस जाते हैं
और इस बार सबके सब नार्निया पहुंच जाते हैं। अब तो पीटर और सुजैन को मानना ही पड़ता है।
लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि मिस्टर टमनस को गिरफ्तार कर लिया गया है जादूगरनी की पुलिस ने,
देशद्रोहों के आरोप में।
लूसी की मदद करने की सजा। हाँ, बच्चे दुखी और थोड़े डरे हुए हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है मिस्टर बीवर से, एक बोलने वाले ऊदबिलाव से।
नार्निया में भूलने वाले जानवर भी हैं।
जी हाँ, मिस्टर बीवर उन्हें अपने घर ले जाते हैं, एक बांध पर बना हुआ आरामदायक घर। मिसेस बीवर उनका स्वागत करती हैं, गर्मा गर्म खाना खिलाती हैं।
और यहीं पर कहानी का बड़ा खुलासा होता है। बीवर दंपति उन्हें बताते हैं पुरानी भविष्यवाणी के बारे में।
हाँ, कि जब आदम के दो बेटे और हव्वा की दो बेटियां केर पारावेल के चार सिंहासनों पर बैठेंगे, तब जादूगरनी का राज खत्म होगा।
और सबसे बड़ी बात, एस्लिन वापस आ रहा है, महान शेर, नार्निया का सच्चा राजा।
इस खबर से बच्चों में एक उम्मीद जगती है। अब यह सिर्फ घूमना फिरना नहीं रहा, ये एक मिशन बन गया है। नार्निया का भविष्य अब इन पर टिका है।
लेकिन इसी बीच एडमंड,
हाँ, जब ये बातें हो रही होती हैं, एस्लिन का नाम सुनकर पीटर, सुजैन, लूसी में तो हिम्मत आती है, पर एडमंड के मन में डर बैठ जाता है और वो चुपके से निकल जाता है
जादूगरनी के पास जाने के लिए, अपने भाई बहनों को धोखा देने।
हाँ, इससे बाकी तीनों और बीवर्स के लिए खतरा बढ़ जाता है। उन्हें अब जल्दी से जल्दी असलैन तक पहुंचना है, स्टोन टेबल नाम की जगह पर।
और उनकी यात्रा शुरू होती है बर्फीले मौसम में, भेड़ियों से बचते हुए। ये खतरनाक सफर है।
लेकिन इस यात्रा में एक चमत्कार होता है। जैसे जैसे वो असलैन की दिशा में बढ़ते हैं, बर्फ पिघलने लगती है।
हाँ, नदियां बहने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, वसंत आ रहा है।
ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, ये असलैन की वापसी का संकेत है। उसकी शक्ति से जादूगरनी का जादू कमजोर पड़ रहा है।
निराशा पर आशा की जीत, बहुत सुंदर प्रतीक है ये।
और फिर उनकी मुलाकात होती है फादर क्रिसमस से, जिन्हें जादूगरनी ने 100 साल से नार्निया से दूर रखा था।
उनका आना ही जादूगरनी के अंत का संकेत है।
बिल्कुल, और वो बच्चों को तोहफे देते हैं, पर ये क्रिसमस वाले तोहफे नहीं, ये जरूरत की चीजें हैं। पीटर को तलवार और ढार,
सुजैन को तीर कमान और वो जादुई हॉर्न, और लूसी को वो ठीक करने वाली औषधि।
हाँ, हीलिंग कॉर्डियल।
ये उपहार उनके बढ़ते साहस और जिम्मेदारी के प्रतीक है। अब वो सिर्फ बच्चे नहीं रहे।
आखिरकार वो स्टोन टेबल पहुंचते हैं और असलैन से मिलते हैं। कैसा है असलैन का वर्णन?
भव्य, एक विशाल सुनहरा शेर, आंखों में बुद्धिमत्ता और शक्ति, थोड़ी उदासी भी। बच्चे उसे देखकर अभिभूत हो जाते हैं।
मिस्टर बीवर ने कहा था ना, वो सुरक्षित नहीं है पर वो अच्छा है, वो राजा है।
ये बात बहुत गहरी है। ईश्वर या परम अच्छाई कोई पालतू चीज नहीं, उसमें रहस्य है, शक्ति है।
हाँ।
असलैन बच्चों का स्वागत करता है और इसी बीच असलैन की सेना एडमंड को भी छुड़ा लाती है।
जादूगरनी उसे मारने ही वाली थी।
एडमंड शर्मिंदा है, असलैन उसे माफ कर देता है, कहता है पुरानी बात भूल जाओ। लेकिन तभी सफेद जादूगरनी खुद वहां आ जाती है।
वो लड़ाई नहीं करती, वो कानून का हवाला देती है।
भोर के समय का गहरा जादू, डीप मैजिक।
हाँ, कि हर देशद्रोही का खून उसका हक है। एडमंड ने देशद्रोह किया है तो उसकी जान पर जादूगरनी का अधिकार है।
ये तो बड़ी दुविधा हो गई। असलन न्याय का प्रतीक है, वो इस कानून को तोड़ नहीं सकता, वरना नार्निया ही नष्ट हो जाएगा।
जादूगरनी सही है कानून के मुताबिक, तो असलन उससे अकेले में बात करता है, एक समझौता करता है।
क्या समझौता?
ये रहस्य रहता है, पर जादूगरनी मान जाती है, एडमंड को छोड़ देती है।
उस रात माहौल बहुत उदास है। असलन अकेला दुखी मन से स्टोन टेबल की ओर वापस जाता है। लूसी और सूजन उसे देख लेती हैं और छिपकर पीछे जाती हैं।
और वो जो देखती हैं वो भयानक है।
हाँ, स्टोन टेबल पर जादूगरनी और उसके भयानक अनुयायी इंतजार कर रहे हैं। वो असलन को पकड़ लेते हैं, वो विरोध नहीं करता।
उसे बांधते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी अयाल काट देते हैं।
और फिर जादूगरनी खुद पत्थर के चाकू से उसे मार देती है। बुराई जीतती हुई दिखती है। ये कहानी का सबसे अंधेरा पल है। हाँ, ये त्याग और मुक्ति का चरम है, आसलान का बलिदान। एक निर्दोष का एक देशद्रोही के लिए। ये ईसाई रूपक यहाँ बहुत स्पष्ट है। लुईस दिखा रहे हैं कि अच्छाई की कीमत चुकानी पड़ती है।
लूसी और सुजन रोती रहती हैं रात भर। सुबह होते ही एक जोर की आवाज होती है,
स्टोन टेबल टूट जाता है
और वहां असलन खड़ा है, जीवित, पहले से ज्यादा तेजस्वी।
ये कैसे हुआ?
असलन समझाता है, वो बताता है कि जादूगरनी गहरे जादू को तो जानती थी, पर वो समय की सुबह से पहले के और भी गहरे जादू से अनजान थी, डीपर मैजिक।
और वो क्या है?
कि जब कोई निर्दोष स्वेच्छा से किसी देशद्रोही के बदले अपनी जान देता है तो स्टोन टेबल टूट जाएगा और मौत खुद पीछे हट जाएगी।
वाओ, मतलब प्रेम और बलिदान का कानून न्याय और मृत्यु के कानून से भी ऊपर है।
बिल्कुल, मृत्यु पर जीवन की विजय। इसके बाद तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। असलैन लूसी और सुजन को अपनी पीठ पर बिठाकर जादूगरनी के महल ले जाता है,
जहां वो पत्थर की मूर्तियां हैं।
हाँ, असलैन उन सब पर अपनी सांस फूंकता है और वो जीवित हो उठते हैं, मिस्टर टमनस भी।
एक पूरी सेना तैयार हो जाती है।
हाँ, और वो ठीक उस वक्त युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं जब पीटर की सेना हारने वाली होती है,
और असलैन खुद जादूगरनी को मारता है।
हाँ, बुराई का अंत होता है और भविष्यवाणी पूरी होती है।
चारों बच्चों की ताजपोशी होती है कैर पारावेल में।
वे बनते हैं हाई किंग पीटर द मैग्निफिसेंट, क्वीन सुजैन द जेंटल, किंग एडमंड द जस्ट और क्वीन लूसी द वैलियंट।
उनके नाम ही उनकी यात्रा बताते हैं। एडमंड, जो भटका था, अब न्यायप्रिय राजा है। लूसी, जिसका विश्वास अटल था, वो बहादुर रानी है।
वे कई सालों तक राज करते हैं, वयस्क हो जाते हैं। उनका राज नार्निया का स्वर्ण युग कहलाता है।
यहाँ उनके कैरेक्टर आर्क पूरे होते हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई।
फिर एक दिन कई सालों बाद वो सफेद हिरण का शिकार करने निकलते हैं,
और शिकार करते करते
वो वापस उसी लैम्प पोस्ट तक पहुंच जाते हैं और फिर अनजाने में ही अलमारी से बाहर निकल आते हैं।
यह प्रोफेसर के घर,
और वो फिर से बच्चे बन गए। बाहरी दुनिया में कोई वक्त नहीं बीता।
ये बहुत अजीब है, क्या ये सब सपना था?
प्रोफेसर तो ऐसा नहीं मानते, वो रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ ऐसा होता है, और शायद तुम फिर जाओगे नार्निया, पर उसी रास्ते से नहीं।
तो ये कहानी सिर्फ एक रोमांचक फैंटेसी नहीं है, इसमें कई परतें हैं।
हाँ, अच्छाई बुराई का संघर्ष तो है ही, असलैन बनाम विच, पर यह आसान जीत नहीं।
और एडमंड की कहानी विश्वासघात और मुक्ति की, कि गलती के बाद भी वापसी संभव है क्षमा से।
असलैन का बलिदान इसी मुक्ति को संभव बनाता है, त्याग और पुनरुत्थान, प्रेम की शक्ति।
विश्वास बनाम संदेह का थीम भी है। लूसी का विश्वास, दूसरों का शक, और फिर प्रोफेसर का तर्क,
और बच्चों का विकास, साहस, जिम्मेदारी, वयस्क बनना।
लूसी के लिखने की शैली भी खास है। वो सीधे पाठक से बात करते हैं कभी कभी, जैसे दोस्त की तरह कहानी सुना रहे हो। हाँ, और वो मिथकों और लोककथाओं को ईसाई विचारों के साथ मिलाते हैं। नार्निया को एक अनोखी पहचान देते हैं। अलमारी, सर्दी, वसंत, ये सब प्रतीक है।
तो अंत में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि साधारण चीजों में भी असाधारण दुनिया छुपी हो सकती हैं।
और ये भी कि सच्ची बहादुरी शायद लड़ने से ज्यादा अपनी गलतियों को मानने, दूसरों को माफ करने और सही के लिए त्याग करने में है। प्रेम और बलिदान में अंधेरे पर विजय पाने की शक्ति है। ये सवाल रह जाता है कि नार्निया जैसी दुनिया क्या सिर्फ कल्पना है या हमारी अपनी दुनिया को समझने का एक आईना।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनोखी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।